नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 46% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में बहुदलीय प्रणाली देश के लोकतंत्र को समृद्ध बनाती है। श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पार्टी के नवनिर्मित अत्याधुनिक और पर्यावरण हितैषी मुख्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, चाबहार बंदरगाह, अशगाबाद समझौता और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण माल ढुलाई गलियारा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए विकास के अपार अवसर पैदा करेगा। तेहरान से 66 यात्रियों को ले जा रहा ईरान का विमान जगरोस की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों की मौत। तिब्बत के ल्हासा में पवित्र बौद्ध मठ जोखांग आग लगने से क्षतिग्रस्त हुआ। और महिला क्रिकेट में जोहानिसबर्ग में तीसरे 2020 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीमों के बीच पहला 2020 मैच आज शाम। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 46% वोट डाले जा चुके हैं। 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री माणिक सरकार, भाजपा प्रदेश प्रमुख बिप्लव कुमार देव और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीरजीत सिन्हा समेत कई राजकीय नेताओं ने अपना वोट दिया। प्राथमिक तौर पर सभी मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। इस बार कुल 292 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2013 में कुल 249 उम्मीदवार थे। इस बार सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम गठबंधन और बीजेपी आईपीएफ के गठबंधन के बीच चुनावी जंग होगा। पुलिस महानिरीक्षक वी सृजेश ने आकाशवाणी को बताया कि अभी तक राज्य में कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निशित जोशी, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
विधानसभा की 60 सीटों में से 59 के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चारीलाम सीट के प्रत्याशी के निधन के कारण यहां का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अब यहां अगले महीने की 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। नागालैंड और मेघालय के साथ त्रिपुरा की मतगणना अगले महीने की 3 तारीख को होगी। नागालैंड और मेघालय में इस महीने की 27 तारीख को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में बहुदलीय पद्धति ने लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है। श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में किसी राजनीतिक दल का गठन मुश्किल काम नहीं है। ऐसे कई दल हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है।
कुछ दल हैं जिनकी आज संसद में भी उपस्थिति है, उनके अपने विचार हैं, हर इश्यू के प्रति समस्या को देखने का उनका अपना नजरिया है। और इतने सब दलों के होने के कारण भारत के लोकतंत्र का एक गुलदस्ता बहुत सुहावना लगता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा राष्ट्रभक्ति से रंगी हुई है। भाजपा और जनसंघ के नेता स्वतंत्रता के बाद सभी प्रमुख जन आंदोलनों में अग्रणी रहे हैं।
आजादी के बाद इस देश में जितने भी राष्ट्रीय हित के आंदोलन हुए, राष्ट्रीय, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादिता, इन सभी तराजू से तुले हुए जितने आंदोलन हुए, आजादी के बाद के वो सारे आंदोलनों का नेतृत्व जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस बात का हम लोगों को गर्व है।
इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पार्टी के लिए ये एक शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता भाजपा का अपना कार्यालय होने का सपना देखता था, जो अब साकार हो गया है। श्री शाह ने कहा कि ये दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल के सबसे बड़े मुख्यालयों में से एक है।
ये कार्यालय जो हमारा बना है 1,70,000 स्क्वायर फीट का कार्यालय है। और मैं सर्च करने के बाद कह रहा हूँ, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे बड़ा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी और सभी आधुनिक सुविधाओं से इसको लैस बनाया गया है।
इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। नए मुख्यालय भवन में आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस 3 भवन हैं। इस परिसर के सभी 70 कमरों में वाईफाई की सुविधा है। सभी इमारतों में सम्मेलन कक्ष, अनुसंधान कक्ष, डिजिटल पुस्तकालय और सीधे प्रसारण के लिए स्टूडियो मौजूद हैं। बिजली के लिए सौर पैनल लगाए गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद मुंबई पहुंच रहे हैं, जहां वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कंटेनर टर्मिनल पर नवनिर्मित चौथे कंटेनर टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
16,700 करोड़ रुपए की लागत वाले नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो समांतर रनवे होंगे। फिलहाल छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केवल एक ही रनवे है। प्रधानमंत्री इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन मैग्नेटिक महाराष्ट्र कॉन्वर्जेंस 2018 में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री शाम की चाय पर औद्योगिकों के साथ बातचीत करेंगे। बाद में श्री मोदी मुंबई विश्वविद्यालय में वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन करेंगे। लुबना यूसुफ मूसा, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
यार, आधार में पता बदलवाना है, कहाँ जाऊँ?
अरे पास के बैंक में चला जा।
बैंक में आधार?
हाँ, अब आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा कई बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध है। बैंक शाखाओं की सूची देखने के लिए uidai.gov.in पर जाएं या 1947 पर कॉल करें। और हाँ, आधार में मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। इससे आधार ओटीपी के द्वारा आप अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर घर बैठे वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह, अशगाबाद समझौता और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण माल ढुलाई गलियारा भारत, ईरान और अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विकास के अवसर पैदा करेगा और खुशहाली लाएगा। श्री कोविंद ने ये बात कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ मुलाकात में कही। श्री कोविंद ने ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में भारत और ईरान के बढ़ते संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चुनौतियां एक जैसी हैं। भारत और ईरान एक दूसरे से काफी कुछ साझा कर सकते हैं तथा परस्पर लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की जनता, संस्कृति और सभ्यता को जोड़े रखने में ईरान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ईरान में फिर से इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता है। डॉ रूहानी की 3 दिन की भारत यात्रा कल सम्पन्न हो गई। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि न्यायपालिका को कानून बनाने और प्रशासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। पटना में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून बनाना और शासन चलाना निर्वाचित सरकार का काम है। विधि मंत्री ने कहा कि अगर कोई कानून मनमाने तरीके से बनाया गया है तो अदालत उसे निरस्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान में विधायिका और न्यायपालिका दोनों को स्वायत्तता दी गई है। किसी भी पक्ष का दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज नई दिल्ली में पीजीडीएवी कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि अब रोजगार की परिभाषा बदल गई है। श्री कोविंद ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने करियर को बढ़ाने के लिए सरकारी अवसरों का लाभ उठाएं और दूसरों के लिए भी अवसरों का सृजन करें। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं शताब्दी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वाणिज्य, परिवहन और पर्यटन में नए कारोबार सफलता अर्जित कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
तेज आवाज देर तक सुनते रहना आपके सुनने की क्षमता खत्म कर सकता है। आपका कान आपके शरीर का ही हिस्सा है, इसे आराम का मौका दें।
शोर शराबा पहुंचाए नुकसान, इनसे बचें तो सलामत कान।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ये आकाशवाणी है। तिब्बत के ल्हासा में कल रात एक पवित्र बौद्ध मठ में आग लग गई। ऑनलाइन डाली गई फुटेज में छत से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम एक बौद्ध मंदिर जलकर राख हो गया है। घटना के समय तिब्बती लोग अपना परंपरागत नववर्ष लोसार मना रहे थे। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही किसी सांस्कृतिक धरोहर को कोई नुकसान पहुंचा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई बासिल राजपक्षे ने कहा है कि सरकार ने राजपक्षे बंधुओं को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि इसमें फिर से संशोधन किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संशोधन से महिंदा राजपक्षे और उनके दो भाई चुनाव के लिए अयोग्य हो गए, इसलिए श्री बासिल का ये बयान बड़ा अहम कहा जा सकता है।
पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे अपना दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, साथ ही उनके दो भाई जो पिछली सरकार में काफी सक्रिय थे, दोहरी नागरिकता होने के कारण कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे में बासिल राजपक्षे का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने पुनः कानून संशोधन की बात कही है। वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने अपने चुनावी वायदों में राष्ट्रपति प्रणाली को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन अब वे उससे कतराते दिख रहे हैं। स्थानीय चुनावों में जीत के बाद महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति प्रणाली खत्म कर संसदीय प्रणाली लाने की बात कही है, ताकि वे पुनः सत्ता पर काबिज हो सकें। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक स्कूल में फायरिंग के बारे में मिले सुराग पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने के लिए फेडरल जांच ब्यूरो FBI को फटकार लगाई है। इस घटना में 17 लोग मारे गए थे। श्री ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि जांच एजेंसी अपना काम छोड़कर उनके चुनाव अभियान में रूस का संबंध साबित करने में अधिकांश समय लगा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ आज आगरा में ताजमहल देखने गए। श्री ट्रूडो ने अपने दौरे को शानदार बताते हुए आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि ताजमहल विश्व के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। श्री ट्रूडो भारत के 8 दिन के दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान वे अहमदाबाद, मुंबई और अमृतसर जाएंगे। शुक्रवार को वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करेंगे। उनके इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, कौशल विकास तथा अंतरिक्ष सहित द्विपक्षीय हित के प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाना है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम ने जांच प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए जांच में सहयोग से इनकार किया है। वे आपातकाल लगाए जाने के बाद 5 फरवरी से पुलिस हिरासत में हैं। श्री गयूम ने पूछताछ के दौरान पुलिस से कहा है कि जांच कानून के मुताबिक नहीं की जा रही, इसलिए वे सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच प्रक्रिया में कानून का पालन किया जाएगा और आरोपों की पुष्टि में पर्याप्त सबूत दिए जाएंगे तो वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 5 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम में आज राधा यादव की जगह राजेश्वरी गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। उधर पुरुष टीम के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज जोहान्सबर्ग के न्यू वॉन्डरर्स स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 5:30 से राजधानी FM रेनबो और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकेगा। 2020 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में सुरेश रैना, लोकेश राहुल और जयदेव उनादकट को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान फॉफ डू प्लेसी की गैर मौजूदगी में JP ड्यूमिनी टीम की कप्तानी करेंगे। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में 5-1 से ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम 2020 फॉर्मेट में भी अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। हालांकि टेस्ट श्रृंखला में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 46% मतदान दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली देश के लोकतंत्र को समृद्ध बनाती है। श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पार्टी के नवनिर्मित अत्याधुनिक और पर्यावरण हितैषी मुख्यालय का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह, अशगाबाद समझौता और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण माल ढुलाई गलियारा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए विकास के अपार अवसर पैदा करेगा। तेहरान से 66 यात्रियों को ले जा रहा ईरान का विमान जगरोस की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। तिब्बत के ल्हासा में पवित्र बौद्ध मठ जोखांग को आग लगने के कारण नुकसान पहुंचा है। महिला क्रिकेट में जोहान्सबर्ग में तीसरे 2020 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीमों के बीच पहला 2020 मैच आज शाम खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।